उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए सुभाष जी बताते बताते अचानक ही चुप हो गए। शरीर में कंपकपी सी दौड़ गई। आज भी उस दिल गहला देने वाले हादसे को याद करते हुए वो कांप उठे। चेहरे पर दर्द और खौफ के मिले जुले भाव उभर आए। हालांकि आरवी भी कुछ डर गई और उसकी आंखों में भी खौफ और दर्द झलकने लगा था, पर सुनने और फेस करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस वक्त सुभाष जी की हालत आरवी से खराब थी, क्योंकि उन्होंने वो मंजर अपनी आंखों से न सिर्फ देखा था बल्कि उनके साथ ही सब घटित हुआ था। आरवी ने सुभाष जी की हालत देखी तो उसने खुद को संभाला और जल्दी से पानी का ग्लास उनके तरफ बढ़ाते हुए बोली, डैड शांत हो जाइए, वो सब बीत गया है, गहरी गहरी सांसें लीजिए और पानी पीजिए। सुभाष जी ने थोड़ा पानी पिया और आंखें बंद करके खुद को शांत करने लगे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने आगे कहना शुरू किया, उस वक्त हम बेहोश हो गए थे, हमें होश आया तो हमने खुद को हॉस्पिटल में पाया। शान जो उस वक्त 7 साल का ही था, वो हमारे पास ही बैठे बैठे सो गया था। पहली बार तब हमने उनके उदास मुरझाए हुए चेहरे को देखा था, गालों पर आंसुओं की रेखाएं बनी हुई थीं, शायद रोते रोते ही उनकी आंख लग गई थी। हमारे सर और पूरे चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थीं और हम अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहे थे। हमने उठने की कोशिश की पर उठ नहीं सके। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर हमें चेक किया। उस वक्त वहां भाई साहब, भाभी और अंश सब मौजूद थे। डॉक्टर ने हमें बताया कि एक्सीडेंट के वजह से हमने अपने चलने फिरने की शक्ति खो दी है। ये सुनकर हमें गहरा धक्का लगा, पर हमने खुद को अपने परिवार के लिए संभाल लिया। सब थे वहां पर हमें सावित्री जी कहीं नजर नहीं आई। हम पर इतनी बड़ी मुसीबत आई पर वो हमारे पास नहीं थी। ये बात हमें खटकी तो हमने भाई साहब से उनके बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने हमारे सवाल को टाल दिया। शान कुछ बोलने को हुआ तो उसे भी बाहर भेज दिया। तब हम कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है हमारे साथ। हम मौत से जूझ रहे थे पर हमारी जिंदगी के दो अहम इंसान हमारे पास नहीं थे। सावित्री जी हमारे साथ नहीं थी, इस बात से हमें जितनी हैरानी हुई थी उतना ही दुख ये जानकर हुआ था कि अमर ने एक बार आकर हमारी खबर तक नहीं ली। हमें 2 दिन बाद होश आया था और हालत तब भी नाजुक थी। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से हमें स्ट्रेस लेने से साफ मना किया गया था, वरना ब्रेन हेमरेज होने का डर था, इसलिए शायद उस वक्त किसी ने हमें कुछ नहीं बताया था। हम पूछते तो भी बात टाल देते। ज्यादातर दवाई के वजह से हम नींद में ही रहते थे ताकि शरीर को आराम मिले और जल्दी रिकवर करे, पर जब भी आंख खोलते तो आंखें अमर और सावित्री जी को ही तलाशती थीं। हम लगभग 1 महीने हॉस्पिटल में रहे, पर उस दौरान सावित्री जी और अमर दोनों में से कोई हमें देखने नहीं आए। शान भी उदास और गुमसुम सा रहने लगा था और हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। 15 दिन बाद जब हमारे शरीर के जख्म कुछ भर गए और सर का जख्म भी काफी हद तक ठीक हो गया, तो उसके बाद हमें डिस्चार्ज मिला और भाई साहब हमें सीधे बैंगलोर ले गए। हमने तब भी बहुत पूछा कि सावित्री जी कहाँ हैं, पर किसी ने हमें कुछ नहीं बताया। बैंगलोर पहुंचकर भी जब हमें वो कहीं नजर नहीं आई तो हमारा सब्र जवाब दे गया। हम जिद पर अड़ गए कि अगर हमें ये नहीं बताया गया कि सावित्री जी कहाँ हैं तो हम खुद जाकर उन्हें ढूंढेंगे। हमारे जख्म कुछ भरे जरूर थे पर ठीक नहीं हुए थे। ऐसे में हमारी जिद देखकर भाई साहब ने हमें बताया कि उन्हें नहीं पता कि सावित्री जी इस वक्त कहाँ हैं। हमें उनकी बात सुनकर झटका लगा कि ऐसे कैसे वो नहीं जानते कि सावित्री जी कहाँ हैं। फिर दूसरा झटका हमें तब लगा जब शान ने हमें बताया कि हमारे घर को किसी ने आग लगा दिया और तभी से सावित्री जी का कुछ पता नहीं है। हमें ये सुनकर गहरा सदमा लगा। पहले हम पर झूठा इल्ज़ाम लगवाकर अमर और हमारी दोस्ती में फूट डाली गई, उसके बाद हमारा एक्सीडेंट जिसमें हमारी जान जाते जाते बची, और अब हमारे घर में आग लगना और सावित्री जी का यूं गायब होना। सब किसी की सोची समझी साजिश नजर आ रही थी हमें, और सबसे ज्यादा चिंता हमें सावित्री जी की हो रही थी। हमने फैसला किया कि हम वापस जाकर उन्हें ढूंढेंगे। भाई साहब ने हमें समझाने और रोकने की बहुत कोशिश की, पर जब हम नहीं माने और वापस जाने लगे तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने हमारे बढ़ते कदमों को ना सिर्फ रोका बल्कि हमारी दुनिया तबाह कर दी। बताते हुए सुभाष जी एक बार फिर अतीत की यादों में भटकने लगे। फ्लैशबैक। सुभाष जी अपनी व्हीलचेयर घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। शान और अंश दोनों एक तरफ खड़े सब देख रहे थे। सुयश जी और अर्पिता जी उन्हें समझा समझा कर थक गए थे, पर वो कुछ सुनने या समझने को तैयार नहीं थे। वो अपनी जिद पर अड़े थे कि वो वापस जाकर सावित्री जी को ढूंढेंगे। अर्पिता जी निराश से खड़ी थीं और सुयश जी भी काफी परेशान लग रहे थे। सुभाष जी अभी गेट के पास पहुंचे ही थे कि उनके कानों में सुयश जी के कहे शब्द पड़े, किन्हें ढूंढने जा रहे हैं आप, जो आपको बर्बाद करके आपको धोखा देकर आपके ही दोस्त के पास चली गई हैं। सुभाष जी के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। व्हीलचेयर जहां थी वहीं रुक गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पलटकर अविश्वास भरी नजरों से सुयश जी को देखते हुए कहा, भैया आप ये क्या कह रहे हैं? सुयश जी ने अपना चेहरा फेर लिया और बेबसी से अपनी आंखों को भींचते हुए बोले, हम वही कह रहे हैं जो सच है। हम जानते हैं कि इस सच्चाई को स्वीकार करना आपके लिए बेहद मुश्किल और तकलीफदेह है, पर अब हम आपको और धोखे में नहीं रख सकते। आपके स्वास्थ्य की वजह से हम आपको अभी कुछ बताना नहीं चाहते थे, पर आपकी जिद ने हमें आपको सच बताने पर मजबूर कर दिया। सुभाष जी शॉक्ड से उन्हें देखे जा रहे थे। कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ बातें घूमने लगी थीं, दिमाग में शक के बीज पनपने लगे थे और दिल किसी अनहोनी के डर से घबरा रहा था। सुयश जी के चुप होते ही उन्होंने खौफ भरी नजरों से उन्हें पूछा, कैसा सच भैया? हमारे अंदर बताने की हिम्मत नहीं है, आप खुद देख लीजिए। इतना कहकर सुयश जी उनके पास आ गए और अपनी पॉकेट से एक फोन निकालकर उनके तरफ बढ़ा दिया। सुभाष जी ने उस फोन को देखा जिसके स्क्रीन पर कई स्क्रैच आए हुए थे, तो वो कुछ चौंक से गए। उन्होंने पहले फोन को देखा, फिर हैरान परेशान निगाहों से सुयश जी को देखते हुए बोले, भैया हमारा फोन आपके पास कैसे आया? उनका सवाल पर सुयश जी ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, एक्सीडेंट के बाद जब वहां से गुजरते एक आदमी ने आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया तब ये फोन आपके पास ही था। हॉस्पिटल की तरफ से हमें जब फोन आया तो हम आनंद फानंद में यहाँ आए, तभी नर्स ने ये फोन और उसके साथ आपकी कुछ और चीजें जो एक्सीडेंट के वक्त आपके पास थी उन्हें हमें दे दिया। तभी से हमने इसे संभाल कर रखा था। लीजिए अपना फोन पकड़िए और व्हाट्सएप पर आए आखिरी मैसेज को देखिए। सुयश जी ने कुछ बातें साफ की, पर सब कुछ अब भी किसी जटिल पहेली की तरह उलझी हुई थी। कुछ देर पहले जो उन्होंने कहा वो बात अब भी सुभाष जी के दिमाग में तूफान मचाए हुई थी, और सावित्री जी का उनके पास ना होना उन बातों को सच साबित कर रही थी जो सुयश जी ने कही, पर वो उस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कांपते हाथों से उस फोन को पकड़ा, जैसे वो उसे लेना ना चाहते हों या उनके अंदर इतनी ताकत ना बची हो कि उस फोन के बोझ को संभाल सके। मन घबराने लगा था उनका। जिस तरह से सुयश जी के भाव थे, किसी अप्रत्याशित और अप्रिय घटना के घटित होने की आशंका से उनका मन भर गया।